बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, आपको मेरा मसीह नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की कृपा से सही सलामत होंगे। मित्रों, आज हमारे लिए फिर से एक सौभाग्य की बात है कि हम जीवित परमेश्वर के वचनों में से सीखें। पिछले अध्ययन में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय पर विचार कर रहे थे, जिसमें हमने विशेष रूप से यीशु के विजयपूर्ण प्रवेश के विषय में स्पष्ट रूप से देखा एवं मंदिर के शुद्धिकरण को भी देखा। आज हम उससे आगे के विषय पर ध्यान मनन करेंगे, झुलसा हुआ अंजीर का पेड़। हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 18 और 19 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, प्रातःकाल नगर को लौटते समय उसे भूख लगी, तो वह मार्ग के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखकर उसके पास गया, परंतु उस पर पत्तों को छोड़कर कुछ भी नहीं पाया। तब उसने उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल नहीं लगेंगे, और अंजीर का पेड़ उसी क्षण सूख गया। मित्रों, वास्तव में इस अंजीर के पेड़ की घटना की व्याख्या करने की कोशिश में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैंने सभी प्रकार के विचारों को सुना है जो अंजीर के पेड़ को दर्शाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि अंजीर का पेड़ इसराइल का प्रतीक है, जैसे कि हम उसे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में देखेंगे। कम से कम हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि जब परमेश्वर इस संसार में आए तो इसराइल राष्ट्र के द्वारा कोई भी फल का प्रमाण नहीं था, सिर्फ विधि, परंपरा और जीवन रहित धर्म थे जिसका प्रभु ने विरोध किया। इसराइल राष्ट्र एक धार्मिक विधि से होकर गया, परंतु उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं था। परमेश्वर ने जो उन्हें जो कुछ दिया था उसे उन्होंने जीवन रहित विधि परंपरा में बदल दिया, जो बिना किसी अस्तित्व और पुरुषत्व के था, जो परमेश्वर के उद्देश्य को किसी भी रीति से पूर्ण नहीं कर रहा था। मेरा मानना है कि परमेश्वर उसी रीति से संगठित कलीसिया के साथ भी व्यवहार करेंगे जिसने प्रभु यीशु को अपनी पीठ दिखाई है या प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि उसका अंजीर के पेड़ को श्रापित करना एक संकेत या प्रतीक है, यह मेरा मानना है। और निश्चित रूप से उसने इसराइल राष्ट्र को दंडित किया और राष्ट्र को 70 ईस्वी सन में विनाशकारी न्याय का सामना करना पड़ा। हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 20 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यह देखकर चेले विस्मित होकर कहने लगे, अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। उनके लिए यह एक आश्चर्य की बात थी। हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 21 और 22 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पर्वत से भी कहो, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मित्रों, हमारे प्रभु उन्हें प्रार्थना में एक शिक्षा दे रहे हैं कि प्रार्थना में विश्वास का होना आवश्यक है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंजीर का पेड़ सूख गया, और वह उनसे कहते हैं कि उनकी समस्या है कि उनके पास विश्वास करने के लिए विश्वास नहीं है कि परमेश्वर इस प्रकार चमत्कारी काम कर सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं करता हूं कि हमारा काम अंजीर के पेड़ को श्रापित करना या सचमुच के पहाड़ को हटाना है। मैं कई वर्षों तक भारत के कई पहाड़ी क्षेत्रों में रहा जो मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। मैं उससे कभी भी नहीं उबा। मैंने हमेशा उन्हें देखकर आनंद उठाया है और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वे दो दिन एक जैसे हो। भजन संहिता 121 में भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। शाब्दिक में क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मित्रों, मैं नहीं सोचता कि वो यह कहना चाह रहा है कि उसको सहायता पहाड़ से मिली है, क्योंकि वह आगे जोड़ता है, सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, जिसे हम भजन संहिता 121 उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं। निश्चित रूप से मैं उन पहाड़ों की तरफ सहायता के लिए नहीं देखता था, पर केवल आनंद के लिए देखता था, और मैं उन्हें कभी भी हटाना नहीं चाहता था। मैं महसूस करता हूं कि पहाड़ को हटाने और अंजीर के पेड़ को श्रापित करने से भी बढ़कर कुछ और महत्वपूर्ण काम है, मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना, परमेश्वर के वचन को बाहर पहुंचाना, ताकि परमेश्वर का आत्मा इसे उपयोग कर सके। मेरे मित्रों, यह एक चमत्कार है जब ये मानव शरीर के होंठ कुछ कह सकते हैं जिसे परमेश्वर का आत्मा एक जीवन को परिवर्तन करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, तो उसमें एक प्रकार के विश्वास की आवश्यकता है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। हमें जो चाहिए वह है विश्वास, कि हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकें कि वह अपने वचन का उपयोग कर सकता है और करेगा। आगे देखते हैं भेदक प्रश्न। फिर से धार्मिक अगुओं के द्वारा यीशु को चुनौती दी गई है। हम मत्तयि सुसमाचार 21 अध्याय उसके 23 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जब वह मंदिर में आकर उपदेश दे रहा था तो मुख्य याजकों और प्राचीनों ने उसके पास आकर कहा, तू किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है और किसने तुझे यह अधिकार दिया है। मित्रों, हम देखते हैं कि धार्मिक अगुए अपने व्यवहार में बहुत क्रूर और घृणापद बन रहे हैं। वे प्रश्न ही नहीं पूछते कि यीशु क्या कर रहे हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि उनके पास कोई भी आधार नहीं है जिसके द्वारा वे उसके आश्चर्य कर्म का इनकार कर सकें। जो वह करता है वे सिर्फ उसके अधिकार पर ही प्रश्न करते हैं। हम मत्तयि सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 24 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसका उत्तर दोगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये काम करता हूँ। यहाँ पर उसका प्रश्न उनके लिए है, और हम मत्ती 21 अध्याय उसके 25 और 26 पद में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से। और वे यह कहकर आपस में विचार विमर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, तब फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया। पर यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप देखें कि ये धार्मिक अगुए उसे द्विधा में डालने के लिए उसे फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शीघ्र ही उन्हें द्विधा में डाल देता है। उसने कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसका उत्तर दोगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये काम करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से। मित्रों, यह सच है कि यदि वे कहते हैं कि यह स्वर्ग से था, तब हमारे प्रभु ने कहा होता कि मैं भी उसी अधिकार के साथ काम करता हूँ। इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यूहन्ना के अधिकार को स्वर्ग के अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए यह सच है कि वे यीशु के अधिकार को भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम मत्तयि सुसमाचार 21 अध्याय उसके 27 पद में आगे पढ़ते हैं, तब उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। तो उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि किस अधिकार से ये कार्य करता हूँ। मित्रों, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस परिस्थिति में तनाव कैसे बढ़ रहा था। प्रभु धार्मिक अगुओं को अत्यंत कठोर या निंदा कर रहे हैं। वह एक दृष्टांत देंगे जिसमें चुंगी लेने वाले और वेश्या भी उनसे ऊपर हैं। और यीशु के दोषारोपण को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। प्रभु इन दो व्यक्ति के विरोध में चल रहे हैं। दो पुत्रों का दृष्टांत। मित्रों, हम मत्तयि सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 से 31 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटे जा आजदा की बारे में काम कर, और उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं जाऊंगा, परंतु वह नहीं गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर वैसा ही कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी इसके बाद वह पछताया और गया। इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, दूसरे ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमसे पहले कर वसूल करने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मित्रों, यह दृष्टांत धार्मिक अगुओं के लिए एक भयानक अपमान था। यीशु उन्हें दूसरे पुत्र के साथ जोड़ते हैं, जिसने कहा कि वह अपने पिता के लिए काम करेगा, परंतु नहीं किया। प्रभु कर लेने वाले और वेश्याओं को इन धार्मिक अगुओं से ऊंचे स्थान पर रखते हैं। यह दृष्टांत आज भी लागू होता है। बहुत से लोग कलीसिया से जुड़ तो गए हैं और धर्मी हैं, और वे सोचते हैं कि वे मसीही हैं, परंतु वे हैं नहीं। वे अपनी कलीसिया में धर्म विधि का पालन कर सकते हैं और सिद्धांत पर मानसिक सम्मति दे सकते हैं, परंतु वे सही विश्वासी नहीं हैं, जब तक कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस प्रेरित कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। मित्रों, चुंगी लेने वाले और वेश्याओं ने अपने पापों को मान लिया और मसीह के पास उद्धार पाने के लिए आए। पहले उन्होंने भी परमेश्वर को नहीं कह दिया था, पर वे देरी से ही सही, परंतु उनके पास आए और अपने पापों से पश्चाताप किया और उसके पास आ गए और उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 32 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि यहूना तुम्हारे पास धार्मिकता का मार्ग दर्शाने आया और तुमने उसका विश्वास न किया, परंतु कर वसूल करने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, पर यह देखकर भी तुम्हें बाद में पश्चाताप नहीं हुआ कि उसका विश्वास करते। मित्रों, धार्मिक अवगे बाहर से धर्म से सजे हुए थे, परंतु वास्तव में अंदर कुछ भी नहीं था। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो आंतरिक भाग न केवल फिर से सजाया जाता है, परंतु इसे नया कर दिया जाता है। अब हमारे प्रभु उन्हें और एक दृष्टांत दे देते हैं, इससे पहले कि वे श्रवण सीमा के बाहर जा सकें। जमींदार और उसके दाग की बारी का दृष्टांत। मित्रों, इस दृष्टांत में जमींदार पिता परमेश्वर को दर्शाता है और पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, और किसान इसराइल का तस्वीर है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 33 पद से लेकर के 38 पद तक पढ़ेंगे। लिखा है, एक और दृष्टांत सुनो। एक स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और बाड़ा लगाकर उसे घेरा। उसने उसके अंदर रसकुंड खोदा और एक मचान बनाया तथा उसे किसानों को ठेके पर देकर यात्रा पर चला गया। जब कटने का समय आया तो उसने अपने दासों को किसानों के पास फसल लेने के लिए भेजा, परंतु किसानों ने उसके दासों को पकड़कर एक को पीटा, दूसरे को मार डाला और तीसरे का पत्थरवाह किया। फिर उसने दासों का एक झुंड और भेजा जो पहले से अधिक बड़ा था, उन्होंने उसके साथ भी वैसा ही किया। परंतु अंत में उसने अपने पुत्र को इस आशा के साथ उनके पास भेजा कि ये मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु जब किसानों ने पुत्र को देखा तो आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, आओ हम इसे मार डालें और इसकी मीराश छीन लें। मित्रों, प्रभु ने अब तक दिए हुए दृष्टांतों में से यह बहुत ही सटीक दृष्टांत है। यह धार्मिक अगुओं को उसकी अंतिम चेतावनी थी जब उसने दृष्टांत में यह कहा, परंतु अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास भेजा। पुत्र उनके सामने खड़ा था और उन्हें दृष्टांत दे रहा था या कह रहा था वे परमेश्वर के पुत्र के साथ क्या करने जा रहे हैं। वह उन्हें यहीं पर बताते हैं जो उनके हृदय में है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 39 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, अतः उन्होंने उससे पकड़ा और दाग की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। मित्रों, इन लोगों के लिए यह चौंकाने वाली बात थी। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 40 और 41 पद में आगे पढ़ते हैं, इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। उन्होंने उससे कहा, वह उन दुष्टों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा जो उचित समय पर उसे फल दिया करेंगे। मित्रों, अब वह उन्हें पीछे पुराने नियम में उसके स्वयं के विषय में पत्थर के साथ जो सदृशता या अनुरूपता दिखाई गई है उसे समझाने के लिए ले जाता है। और हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 42 और 43 पद में आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दे दिया जाएगा। मित्रों, यहाँ पर एक रोचक बात जो ध्यान देने की योग्य है कि प्रभु ने स्वर्ग के राज्य की अभिव्यक्ति को परमेश्वर का राज्य से बदल दिया है। मैं महसूस करता हूँ कि वह एक बड़ी सीमा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वह जो उसके पास आएंगे और उन सब अन्य जातियों और प्रत्येक को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और उस राष्ट्र को दिया जाएगा जो उसके लिए फल लाता है। वह यह है कि यहूदियों से ले लिया जाएगा और कलीसिया को दे दिया जाएगा। पहला पत्रस की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राज के याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसमें तुम्हें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। कलीसिया की वह पवित्र प्रजा, हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 44 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा, परंतु जिस किसी पर यह पत्थर गिरेगा उसे पीसकर धूल बना डालेगा। मित्रों, जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा, यह मसीह के प्रथम आगमन को संबोधित करता है। वह चट्टान है जिस पर कलीसिया बनी है। पहला क्रंथियों के पत्र 3 अध्याय उसकी 11 पद में लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मित्रों, उस पत्थर पर गिरना मसीह के पास उद्धार के लिए इस अनुग्रह के दिनों में आना है। मसीह को अस्वीकार करना अपने ऊपर न्याय के दिन पत्थर को गिराना है, जिसके बारे में दानियल नबी ने भविष्यवाणी की है, जिसे आप दानियल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 34 और 44 से लेकर 45 पद में पढ़ सकते हैं, जो मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 45 पद में पढ़ते हैं, जब मुख्य याजकों और फरीसियों ने उसके दृष्टांतों को सुना तो समझ गए कि वह हमारे ही विषय में कह रहा है। मित्रों, वे जानते थे कि वह किसके बारे में बोल रहा है। हमारे दिनों में दुर्भाग्यवश बहुत से लोग नहीं देखते हैं कि यह उनके लिए भी लागू होता है, विशेषकर उनके लिए जो कलीसिया में हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 46 पद में आगे पढ़ते हैं, और जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो वे भीड़ से डर गए, क्योंकि लोग उसे नबी मानते थे। मित्रों, यद्यपि धार्मिक अगुओं ने यह निश्चय कर लिया कि यीशु को मारना चाहिए, जब वे उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे तो वे भीड़ से डर गए जो उसे परमेश्वर का भविष्यवक्ता मानती थी। यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 22 में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम इन विषयों को देखेंगे। यीशु राजा के पुत्र के विवाह की भोज का दृष्टांत देते हैं, यीशु उत्तर देते हैं और हेरोदियों, सदुकियों और फरीसियों को चुप करते हैं। मित्रों, अध्याय 21 धार्मिक अगुओं के निर्णय के साथ समाप्त होता है कि यीशु को मरना है, अर्थात यीशु को मरना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है, उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु वे उस समय भीड़ से डर गए। यह अध्याय जो हमारे सामने है यीशु के मौखिक टकराव को आगे बढ़ाता है, जो हमारे प्रभु के साथ धार्मिक अगुओं का है। सबसे पहले वह उन्हें राजा का दृष्टांत देता है जिसने विवाह का बोझ रखा। यह उसके प्रमुख याजक और अगुओं को निरंतर उत्तर देना है, जिसे उसने पिछले अध्याय में आरंभ किया था, विवाह के बोझ का दृष्टांत। मित्रों, यह दृष्टांत जिसे यीशु ने दिया बहुत महान है, क्योंकि यह मेरे और आपके लिए है जिसमें हम रहते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहा। मित्रों, यहां पर शब्द फिर पर ध्यान दें। यह छोटा शब्द दर्शाता है कि यीशु अभी भी मुख्य याजक और प्राचीन को कह रहे हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 23 पद में उल्लेखित है। और हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जाती है जिसने अपने पुत्र के विवाह का भोज दिया। प्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित राजा या पिता परमेश्वर है और उसका पुत्र प्रभु यीशु है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वह फिर से उस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं परमेश्वर के राज्य के बदले में स्वर्ग का राज्य, जिसे उसने पिछले दो दृष्टांतों में उपयोग किया था। यह दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के दृष्टांत के साथ समानांतर है, परंतु यहां पर कैसे और क्यों इस युग का आरंभ हुआ पर अधिक जोर दिया गया है। इस युग के उपसंहार के विषय से भी बढ़कर, जिसे हमने मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में देखा था, यहां पर हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, उसने भोज में आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने दास भेजे, परंतु उन लोगों ने आना नहीं चाहा। उसने भोज में आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने दास भेजे। कौन लोग आमंत्रित थे? इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़े। हमारे प्रभु ने अपने शिष्यों को उनके पास भेजा। आप उन्हें स्मरण करें और भविष्यवक्ता जो पुराने नियम में संदेशवाहक थे उन्हें भी। हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर उसने अन्य दासों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पाले हुए पशु काटे जा चुके हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में आओ। इसकी प्रतिक्रिया क्या थी? हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने मार्ग पर चल दिए, एक अपने खेत को तो दूसरा अपने व्यापार को, और शेष ने उसके दासों को पकड़ा और उनसे दुर्व्यवहार करके उन्हें मार डाला। मित्रों, या परमेश्वर के आमंत्रण को इसराइल का अस्वीकरण है, क्योंकि उन्होंने उसके संदेशवाहकों को मार डाला, यहां तक कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भी मार डाला। हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, तब राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना भेजी और उन हत्यारों को नाश करके उनके नगर में आग लगा दी। मित्रों, यह निस्संदेह 70 ईस्वी सन में रोमन सम्राट तीतुस के द्वारा यरूशलेम के विनाश का उल्लेख करता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह के भोज तो तैयार हैं, परंतु वे जो बुलाए गए थे योग्य ना निकले। मित्रों, अब हम यहां पर आमंत्रित करने के नियम और तरीके में एक निश्चित परिवर्तन को देखेंगे, और यह वर्तमान समय का उल्लेख करता है जिसमें हम रहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, जहां पर हम पढ़ते हैं, इसलिए मुख्य चौराहों पर जाओ और जितने भी तुम्हें मिले विवाह के भोज में बुला लाओ। वे दास गलियों में गए और जो भी मिला, भला या बुरा उन्हें मिला, सबको एकत्रित किया और विवाह का घर भोज के अतिथियों से भर गया। परंतु यहां पर ध्यान दीजिए कि क्या होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं, पर जब भोज में सम्मिलित अतिथियों को देखने के लिए राजा आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए ना था। विवाह का वस्त्र क्या था? मित्रों, राजा का निमंत्रण सभी लोगों के लिए है, परंतु राजा की मांग को बिना पूरा किए आने में एक खतरा है। उस भोज का वस्त्र मसीह की धार्मिकता है, जो उद्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थात जरूरी है, और यह उन सबको दिया जाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। प्रेरित पौलुस इस थोपी हुई धार्मिकता के बारे में कहते हैं, रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसके 21 और 22 में, परंतु अव्यवस्था से पृथक परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी साक्षी व्यवस्था और नवी देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा सब विश्वास करने वालों के लिए है। कुछ भेद तो नहीं, सबके पास भोज के वस्त्र होने चाहिए। हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, और उसने उससे कहा, मित्र, तू यहां विवाह का वस्त्र पहने बिना कैसे आ गया? और वह कुछ न कह सका। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि वह शब्द रहित था। मैं कुछ लोगों को यह कहते सुनता हूं कि उन्हें यीशु मसीह को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, वे अपना मौका परमेश्वर के सामने ले लेंगे, वे अपने समस्या पर तर्क प्रस्तुत करेंगे, और जो भी हो, हमारे प्रभु ने कहा कि वह व्यक्ति जो विवाह के वस्त्र को बिना पहने था वह शब्द रहित था। हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं, तब राजा ने अपने नौकरों से कहा, उसके हाथ और पैर बांधकर उसे बाहर अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मित्रों, विवाह के वस्त्र को ग्रहण करें या न करें यह आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु मसीह ने आपके लिए भी यह वस्त्र उपलब्ध कराए हैं। निमंत्रण सभी लोगों तक पहुंचाया गया है, परंतु आपको राजा के शर्त पर ही आना होगा। अब मसीह के शत्रु अपना अंतिम आक्रमण करेंगे, प्रभु यीशु पर उनका अंतिम आक्रमण होगा। सबसे पहले हेरोदी लोग आएंगे, तब सदूकी लोग और अंत में फरीसी आएंगे। हमारे प्रभु फरीसियों को प्रश्न पूछेंगे और वे उससे जितना अधिक जल्दी हो सके दूर होने की कोशिश करेंगे। वह अंतिम टकराव को चिन्हित करते हैं और अध्याय 23 में हम उसे उनकी निंदा या उन पर दोषारोपण करते हुए सुनेंगे। हेरोदी लोग कैसर को कर देना चाहिए या नहीं पर प्रश्न लेकर आएंगे, सदूकी लोग पुनरुत्थान के विषय में प्रश्न के साथ आएंगे और फरीसी लोग अपने प्रश्न लेकर आएंगे जो व्यवस्था के महान आज्ञा के विषय में है। हम इसे देखेंगे कि हमारे प्रभु किस आश्चर्यजनक तरीके से इनका उत्तर देते हैं। क्या मैं आपसे कहूं कि मैं इसे उसके ईश्वरीय होने का यह एक प्रमाण मानता हूं कि किस तरह से वह अपने शत्रुओं के साथ विचार विमर्श करते हैं। मित्रों, यहां पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए हम आज के इस अध्ययन को यहीं पर हम रोकते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि अवश्य ही आप इस अध्ययन के द्वारा आशीष पा रहे हैं और अगले अध्ययन में हम और भी अधिक रुचिदायक बातों को देखेंगे कि हमारे प्रभु किस रीति से सदूकी, फरीसी और याजकों या शास्त्रियों को जवाब देते हैं। तब तक आप अपने विचार को रखें कि आप वस्त्र पहनने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि बिना वस्त्र के आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और वस्त्र है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। क्या आज आप तैयार हैं? विचार आपके हाथों में है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसने मैं पाता पूरा विश्राम। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। पाप की लहरों से घिरा हुआ था ना कोई मंजिल और ना किनारा। पाप की लहरों से घिरा हुआ था ना कोई मंजिल और ना किनारा। वो आया बनकर मेरा सहारा, वो आया बनकर मेरा सहारा। पाप की लहरों से मुझे उबारा, पाप की लहरों से मुझे उबारा। यीशु है मेरा मुक्ति धारा, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम।